ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 48। श्री मनवा उच्चु मनवो वयं तव निदेशकारिणे दितीजेन देव परिभूत से तव भवतः खड़ः स उपसंहितः प्रभु करवामते किं नुपासधि किं करान्। श्रीमान् शब्दार्थ श्रीमनवः उच्चुः, सभी मनुओं ने यह कहकर नमस्कार किया। मनवः संसारी कार्यों के नेता मनु, वयम हम सब, तब आपके निदेशकारिणः आज्ञापालक, दितिजेना दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु के द्वारा, देवा हे प्रभु परिभूता अवहेलना करके, सेतवः मानव समाज में वर्णाश्रम पद्धति संबंधी नियम, भवता आपके द्वारा खलः दुष्ट सह वह उपसंहृता मारा गया। प्रभु हे प्रभु करवाम हम करें ते तुम्हारा किम क्या अनुसाधी कृपया आदेश दें। किंकरान आपने शाश्वत सेवकों को, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की क्षणभंगुर प्रभसत्ता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे सारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया आपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कि अब वे क्या करें। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सकें और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सकें। मनुओं ने मनु संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ है वैदिक ज्ञान तथा मनु शब्द यह बताता है कि इस ज्ञान को देने वाले मनु हैं। ये मनु कभी तो परमेश्वर के अवतार होते हैं और कभी सत्याविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान कृष्ण ने स्वयं सूर्यदेव को उपदेश दिया था। ये मनु सामान्यतः सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद्गीता की महत्ता बताए हुए कहा, इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह। यह उपदेश विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया था जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की ही वह मनु संहिता कहलाती है, और जिसमें मनुष्य को मनुष्य की भांति किस तरह जीवन यापन किया जाए इसके विषय में वर्ण तथा आश्रम पर आधारित आदेश हैं। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के शासन में मानव समाज छिन्न होकर निम्न से निम्नतर हो जाता है। इस तरह विश्व में कहीं शांति नहीं रह जाती। निष्कर्ष यह निकला कि यदि हम मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हमें मनु संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना होगा, जिसकी पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने की है। तो आप सबने ये भागवत के इस क्रम में समस्त देवताओं के द्वारा बारी बारी से भगवान नरसिंहदेव का स्तुति सुन रहे हैं। इस बारी के अनुसार आज क्रम पड़ा है मनुओं का। पिछली बार हम सुने थे नागलोक के वासियों का, और अभी मनुलोक का बारी पड़ा है। वो आकर के प्रणाम कर रहे हैं। वो कहते हैं, मनवो वयम, हम सब मनुआ है, मनु है, तब निदेश कारिणो, आपके आज्ञा पालक हैं। हाँ मनु, आपके आज्ञाकारी हैं। द्वितीजेन द्वितीज, द्विती से जात पुत्र हिरण्यकशिपु के द्वारा आपके आज्ञा को हम पालन कर रहे थे, आज्ञा को और हमारे पालन को दोनों को उल्लंघन कर दिया गया। किसके द्वारा? द्वितीज। द्वितीज मतलब हिरण्यकशिपु द्वितीय से जात पुत्र, वैसे बदमाश निकला, सब बंद कर दिया, नियम थे सब बंद। तो भवतः खड़ा, लेकिन प्रभु आपने आज इसको मार दिया, अभी हमारे सामने उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ, अब हम अपने स्थिति में आ गए, नहीं तो वो जब तक था हमारा हाल खराब था। एक तो सब हम मनु का काम होता है, वर्णाश्रम प्रणाली विधि को समाज में देना और उसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन बोलते हैं कि हमसे करने नहीं देता था। सारे मनु ने एक साथ मिलकर कह रहे हैं। तो मनु ये शब्द से पता चलता है कि जितने मनुष्य हैं ये सभी के फोर फादर हैं। विधाता हैं परमेष्ठि ब्रह्मा, उनके पुत्र होते हैं मनु, जिनसे मनुष्य समाज निकला हुआ। ये मनुष्य का शुरुआत मनुओं से हुआ, तो मनुष्य को इस संसार में कैसे मनुष्य की तरह रहना चाहिए, मनुष्य उचित कार्य आचरण आदि क्या है, कैसे रहन सहन खान पान बातचीत आचार व्यवहार होना चाहिए, ये सब नीति नियम को निर्धारण करने वाले हमारे नेता जो असली फादर मनु, उन्हीं का उत्तरदायित्व तो है। और वो कैसे करते हैं वो आपने भी नहीं कर सकते हैं, वो भगवान के द्वारा संक्ति संपन्न किए जाते हैं। भगवान उनको ट्रेनिंग देते हैं, भगवान के द्वारा तालीम प्राप्त हो करके, आदेश प्राप्त हो करके इस नियम जो विधि भगवान ने उनको सिखाए, तो भगवान बोले इसी विधि के अनुसार मनुष्य संसार को पालन करो, मनुष्य को सिखाओ और मनुष्य इसी प्रकार जीना रहना आचरण व्यवहार इसे करे। तो मनुओं ये पूरे संसार भर मनुष्यों के अंदर इस नियम को लागू कराना ये काम है। और उस नियम में श्रेष्ठ नियम क्या है? वर्ण आश्रम धर्म। हम जानते हैं भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं ये जो चार वर्ण चार आश्रम, ये कहीं फैक्ट्री से नहीं प्रोडक्ट हुआ, किसी कवि की कोई नेता ये नहीं बनाया, ये कहां से आया? मया सृष्टम, मैंने सृष्टि किया। आजकल तो कई हमारे बड़े बड़े नेता बोलते हैं जातिवाद ये सब बेकार है, ये क्या है, सब परे हो जाना चाहिए, जाति पाति से परे, ये सब नीचता है, संकीर्णता है, ये सब हमारे दुर्बुद्धि का उपज है। भगवान कहते हैं कि मैंने सृष्टि किया, भगवान जो संपूर्ण संसार को, उस संसार में जितने प्राणी है सबको सृष्टि किए हैं, और हम बनकर बोलेंगे नहीं ये सब ठीक नहीं, कितनी दुर्बुद्धि बात है। हम तथाकथित समाज में माता बनते हैं, पिता बनते हैं, धाता बनते हैं, पितामह बनते हैं, लेकिन ये सब थोड़ी दिन का खेल है, असलियत हम नहीं, हम सब डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट पिता, डुप्लीकेट माता, डुप्लीकेट चाचा, सब डुप्लीकेट है। असली में भगवान कहते हैं ऐसा हम कोई नहीं कह सकते, संभव सर्वभूतानाम, जितने प्राणी है सभी का अहं बीज प्रदपिता, मैंने उनका सीड गिविंग फादर हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये कहेगा ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं जीत करके मैं उनका बाप हूं, बस पहले भी नहीं था, कुछ दिन तक रहूंगा, फिर मेरा भी एक्सपायर हो जाएगा, उनका भी एक्सपायर हो जाएगा। सर्वजोनी सुकुंतया मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत जोनी अहं बीज प्रदपिता, सारे डिटेल बता दिए भगवान, सर्वजोनी सुकुंतय, कोई बाकी नहीं रह गया, जलचर से लेकर के पेड़ पौधे से लेकर के कीट पतंग आकाश सारी सरीसृप और मनुष्य आदि 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 सब सबका लगाए सर्वजोनी सुकुंत मूर्त यह संभवंतिया, ये जो विग्रह मूर्ति रूप धारण किए, ये जो फिगर, ये जो शरीर प्राप्त किए, वो आया कहां से? तासांग ब्रह्म महत जोनी, वो जो उनका मां बना, उनका गर्भधारी मां तो महत ब्रह्म है, और मैं पिता हूं, ये मां और ये बाप, ये कोई बाकी नहीं रहेगा सबके। तो वो कहते हैं जैसे माता पिता पुत्र के कल्याण के लिए कहते हैं कि नहीं यहां मत जाओ, ये करो, इसे खाओ, इसे पढ़ो, बच्चा है वो आपने हिताहित ज्ञान नहीं रखता, तो उसके हित और अहित के लिए उनके गार्डियन और माता पिता चिंतित रह करके उनको हित के लिए बताते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तविक हितकारी तो वही है जो असली पिता है, वही हित के उद्देश्य से इस समग्र संसार में ये चार वर्ण और चार आश्रम की सृष्टि किए। बोलते चातुर्वर्णं मया सृष्टं, और आजकल हम पढ़े लिखे तथा कथित नेताओं बोलते हैं कि ये तो जातिवाद है, संकीर्णता है, व्हाट इज दिस, नहीं ये जातिवाद जो संकीर्णता वो हमारे उपज है दुर्बुद्धि का, क्योंकि हम जानते नहीं, इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। ये जो जातिवाद बोलते मैं पंडित का लड़का, मैं पंडित होऊंगा, अरे तू कैसे पंडित हो जाए, तुम्हारा पिता डॉक्टर है, तू डॉक्टर होगा, ऐसे गारंटी है कि हो सकता है ऐसा? नहीं, क्या पता तू डॉक्टर होगा, तेरा पिता डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर होगा, नहीं तो क्यों पकड़ता मैं पंडित का लड़का पंडित हूं, मैं ब्राह्मण का लड़का मैं ब्राह्मण हूं। भगवान ऐसे नहीं सृष्टि किए, भगवान कहते हैं चार वर्ण और चार आश्रम ने सृष्टि किया, किस आधार पर? गुण और कर्म, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर, आपके गुण कैसा है, आपके कर्म कैसा है, उस आधार पर आपके जाति को निर्णय करना पड़ेगा आप किस जात के, नहीं आपके बाप के हिसाब से आधार पर आपका निर्णय किया जाएगा, नहीं आपके जमजम लक्षणं प्रोक्तम, जिसका जैसा लक्षण हो, जैसा स्वभाव हो, जैसा गुण हो, जैसा कर्म हो, इसी के अनुसार, इसी के आधार पर उनके जाति निर्णय करना चाहिए। जाति होना बहुत ही आवश्यकता है संसार में, एक सुनियोजित समाज अगर ठीक ठीक से प्रगति के रास्ता पर चलना चाहेगा तो इसमें ये वर्ण और आश्रम होना अनिवार्य है। चार प्रकार के वर्ण और चार प्रकार के आश्रम, ये भगवत निर्मित है। जैसे हमारे ये शरीर, सभी का अपना अपना बड़ी है शरीर है, इस शरीर में शरीर को पूर्ण कहा जाएगा, सर्वांग पूर्ण कहा जाएगा जब ये हमारा शरीर में सारे अंग उपांग सारे अवयव ठीक ठाक है, पैर भी है, पेट भी है, हाथ भी है और सर भी है, सब ठीक ठाक अपने अपने स्थान पर है, तो यह एक पूर्ण शरीर माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार शरीर के हिसाब से समाज भी इसी प्रकार है। ये शरीर का प्रत्येक अंग का अपना अपना गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म निर्धारित किया गया है। ये शरीर के सबसे अधो अंग है क्या है? पैर, चरण है। उन दो चरण बिचारे पूरे शरीर को लोड़ को ढोढ़ोकर घूमते रहते हैं और कुछ करते हो? जहां शरीर जागा मन करेगा उन बिचारे लेबर की तरह ढोढ़ोकर लेकर जाएंगे, ना हाथ कुछ करे, ना पेट कुछ करे, ना सर, बाकी कोई कुछ नहीं, सब बैठे रहेंगे चुपचाप, वो लेकर जाएगा। वो अगर कभी सोचेगा ही मैं हमेशा क्यों ये काम करूं, मैं नहीं करूं, हमारे भक्त लोग कभी सोचते ना, मैं क्यों हमेशा ही सेवा समझा करता, मैं सेवा नहीं करूं, बाकी ऐसे कुछ नहीं करते, बैठे रहते मैं ही सब करता रहता, पूरे शरीर के भार मैं ही ढोते रहूंगा, संपूर्ण शरीर के भार वही ढोएंगे, दो ही चरण, वो दो चार कोई हेल्प करते मुझे, कोई हेल्प भी नहीं करते हैं, जब मर्जी तब रात दिन जब मर्जी तो चलना, मुझे चलना पड़ता है सब कुछ लेकर, पूरा लोड लेकर के, और कोई लोड लेते नहीं। ये है शूद्र वर्ण। परिचर्यात्मकं धर्मम, शूद्र वर्ण के जो हैं उनको उपरिस्थ जितने वर्ण है सभी का ढो करके सभी के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनका कार्य एक ही होता है, एक काम होता है शूद्र का, क्या? परिचर्यात्मकं कर्मम, दूसरों के मतलब अपनों से बड़ों का आदेश को पालन करना, यही एक उनका धर्म है, एक उनका कर्म है। उसके ऊपर पेट है, पेट से नीचे पैर आ गया उनको पोजिशन, पेट ये बेचारा तो अपने स्थान में है ना, बेचारा घूमता फिरता कुछ करता है, और सारे शरीर के जितने अंग है पैर से लेकर के सर पर्यंत सभी को खुद खाएगा, खुद पचाएगा, व्यवस्थित करके सारे रस शक्ति सबको संचार करेगा। ये है वैश्य, व्यापार करता है, लेगा और देगा, लेन देन का काम होने का, सब रस ग्रहण करेगा, पचाएगा, वो कहां कहां से खट्टा की विभिन्न प्रकार के रस, विभिन्न प्रकार के खाद्य खाएंगे, उसको पचा करके और शक्ति के रूप में परिणत करके सप्लाई करेगा सब जगह पर, सारे मार्केट में सब प्रकार की चीज सप्लाई करना, ये उनका काम, सब इधर से उधर से कलेक्ट करके लाएगा, रखेगा और सबको सप्लाई देगा। भले व्यापारी लोग पैसा से लेन देन करते हैं, वो पैसा नहीं लेता पेट हमारा, लेकिन लेता है वो, देता है सब, है ना। कभी हम अगर ये सोचें कि भाई हाथ बोलेगा मैं परिश्रम कर रहा हूं, सारे कमाता हूं दमाता हूं सब करता हूं, और पेट सब खाता मैं नहीं भोग पाता हूं, ऐसे सोचने से नहीं चलेगा, नहीं, पेट को ही देना पड़ेगा, वही वैश्य है, उन्हीं का दायित्व है संपूर्ण समाज को हरेक वर्ग को वो सप्लाई दे, अपना अपना हिसाब से रिक्वायरमेंट सप्लाई दे, है ना। वो वैश्य कोटि का है। उसके ऊपर आता है बाहु, ये हाथ दोनों है, ये है क्षत्रिय कोटि के, क्षत्रिय वर्ण का वैश्य का, मैं भूल गया, वैश्य का तीन काम होता है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। इसे शूद्र का एक काम होता है, वैश्य का तीन काम होता है, क्या क्या? खेती करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना, यही तीन काम पेट का मन तो वैश्यों का, ये तीन काम होना चाहिए। सही वैश्य फिर दूसरा काम नहीं करना चाहिए उनको, ना, तीन काम उनका होता है, तो फिर समाज में उनका बहुत ही आवश्यकता है, ऐसा चमन चलेगा नहीं। तो उनके ऊपर होंगे क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग का काम क्या है, क्या है? स्वर्जतेज धृतिर्दाख्य युद्धे चापि अपपलायनम दानम ईश्वर भावंश क्षेत्र कर्म स्वभावजम। छह सात कर्म उनका होता लगभग, इसे नौ छ तीन एक तीन तीन का क्रम में आया, इसमें शायद एक कहीं आड़ होता है। तो क्षेत्रियों का छह सात काम होता है क्या? आपने वीरता शौर्यता आपने पराक्रम को दिखा करके मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना। शरीर में कोई आएगा कोई आघात घात देने के लिए, सबसे पहले कौन उठ जाएगा? हाथ उठेगा, रोकेगा उसको, जो कुछ एक्शन लेना है वही करेंगे। और मेंटेन के लिए पालन के लिए जो सब काम करना, लिखना पढ़ना जो सब करना, वो भी हाथ ही करेंगे। ये दान देना है उसी हाथ में लेंगे, दान लेना है इसमें करेंगे, ईश्वरता दिखाएंगे, जो सब करेंगे ये हाथ के काम, ये क्षत्रिय का काम है, वह उसका काम करता है। और उसके ऊपर में महा आलसी निलट्ठा कुछ नहीं करता, केवल बैठा रहता 24 घंटा, बाकी सब कुछ काम करते हैं। कौन है? सर हेड है, बैठा रहता है आलसी, कुछ नहीं, सबसे ऊपर सीट में बैठा रहता है। अब वो है ब्राह्मण, वो उसका कुछ काम ही नहीं वो कुछ नहीं करेगा ना, लेकिन उसका काम है नौ, बाकी सबसे तीन तीन घट करके आया, उनके सबसे ज्यादा काम है नवगुण संपन्न। क्या है? समा दमा तप शोच ख्यंति ख्यांति आजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये नव गुण वाले होते हैं ब्राह्मण, सारे तपस्या इंद्रिय संयम समा दमा तप शौच पवित्रता आदि सब प्रकार के ये जो गुण है, बाकी वर्णन नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण का ड्यूटी बैठे बैठे इसको काम करेगा। सारे तकलीफ उनको उठाना पड़ेगा, इसलिए तो कहीं उनको दूसरा काम नहीं दिया गया। ये जो आपने आप में जानबूझकर कष्ट उठाना जो उठाएगा, तो उसको दूसरे काम नहीं देंगे, बोलो बैठो कष्ट भोगते रहो, तो बैठे बैठे कष्ट भोगता है। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी जब विदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना किए, उसके बाद में 70s में आए भारत, तो बम्बे में बहुत बड़े प्रोग्राम किए, तो बहुत सारे मीडिया आकर उनको पूछे रिपोर्टर कि स्वामी जी फिर भारतवर्ष में तो कोई संस्था का कमीशन था नहीं, सैकड़ों संस्थाएं हैं ये जो आप काम कर रहे हैं, भगवान के काम दाम नाम वही प्रचार करने में लगे, सैकड़ों संस्था है और बनते ही जा रहा है, फिर आप ये कि ये इंग्लिश वाला संस्था क्यों बना दिया है ना, ना? हमारा सब देसी है, ये देसी विदेशी मिक्स ब्रेड ऐसे क्यों बना दिया है ना, ना? धर्म है देसी और संस्था हुआ विदेशी है ना, ऐसे कैसे क्यों कर दिया, क्या आवश्यकता, बाकी कोई संस्था के साथ आप मिलकर काम कर लेते, इतने सारे संस्था। तो पप्पा जी बोले बात आप सही कहते, लेकिन मैं ये संस्था किया ना क्या उद्देश्य क्यों करने का? पप्पा जी बोले एक ही उद्देश्य मेरा था, इसलिए मैं इस कर्ण सोसाइटी को किया। क्या ना, आजकल समाज में इतने संस्था तो है, लेकिन आजकल हमारा समाज का स्थिति है क्या न, हेडलेस सरहीन समाज में, बाकी है मतलब पैर है पेट है और हाथ है लेकिन सर नहीं है। ये स्थिति को देखकर मैं बोला भाई ये हेडलेस सोसाइटी में हेड आवश्यकता है, तो मैं कुछ हेड तैयार करने के लिए संस्था बनाया। अब एक बात सोचने के लायक है, यहां हमारा शरीर में चार मुख्य अंग है, उसमें जो नीच अंग है शूद्र वर्ण के जो पैर है, हो ना हो कभी एक्सीडेंट हो जाए दोनों ही लेबर मर जाए, मतलब दोनों पैर कट जाए तो आप जिएंगे ना मरेंगे। आजकल तो प्लास्टिक लकड़ी का पैर लगा लेते हैं, काम चल जाता, कोई जरूरी थोड़ी है वो पैर होना चाहिए, काम चल जाता जी जाएंगे है ना। नहीं अब पेट भी खराब हो जाए, अल्सर फलसर क्या क्या हो जाता, काट पीट कर दूसरा प्लास्टिक थैले में डाल देते हैं, स्टमक भी दूसरा चेंज कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाता है। व्यापार करना है किसी को बैठा दे व्यापार करना, उनका लेन देन काम करता रहता है वो भी चल जाता है। है ना। हाथ दोनों ही क्षेत्रीय, दोनों बाहु भी चले जाए तब भी मेंटेन कर लेते हैं, दूसरे दूसरे प्रकार के हाथ लगा करे, नहीं हाथ लगाए तब भी जी जाते हैं, चल जाते हैं, आपका जीने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अकस्मात ऐसा हो आपका सर उड़ जाए, कोई प्लास्टिक की लकड़ी का किसी लगाकर चला लेंगे, चलेगा क्या भाई? ये तो निलज्जा निकम्मा अंग है ना, बाकी सारे काम के अंग है, ये अंग जबर चला जाते हैं, मर जाते हैं तो दूसरे लगा करके चल जाते हैं, हम जी जाते हैं, लेकिन ये वाला अंग और चला जाए तो काम बनेगा नहीं। राम नाम सत्य है, हो जाएगा सत्य भी। ये कुछ नहीं करने वाला निलठा आलसी अंग जो है, इतने उत्तरदायित्व है, उसके बिना तो तेरा मरना ही है, इसके रहने से तेरा जीना, उसके नहीं रहने से मरना, कितने बड़ी उत्तरदायित्व है उसका। और हम आंदोलन करते हैं, शूद्र वैश्य ये ब्राह्मण क्यों है? हम सब ब्राह्मण होंगे, हटाओ उनको, हमारा कोटा फिक्स करो उनमें, ये क्या करेंगे सब? अरे मरे हुए जनता, हेडलेस, हेड के बिना देखने में बड़ा अद्भुत लगेगा, है ना? नहीं कभी सोचे आपने कभी ऐसा, कभी आपका सामने ऐसा कोई विग्रह मूर्ति कभी आ जाए? ऐसे वर्णन आता है पुराण में, भगवान शिव का जो शादी हो रहा था, उनके बारात निकला, उनके बारात में सब अद्भुत अद्भुत लोग सब भाग लिए थे बारात में, ऐसे ऐसे लोग भी थे उनके गण में जो अच्छे बढ़िया सा पैर था, हाथ था, पेट बढ़िया, सब पोशाक पत्र पहने, लेकिन हेड ही नहीं था। उसको बोलते हैं क्या, इसका अच्छा भाषा बोलते हैं, कबंध, कबंध बोलते ना, कबंध बोलते हैं, मतलब यहीं से ऊपर नहीं है, वहां से नीचे है, और वो बिल्कुल सर धर कर चल रहे हैं मेन रोड में, ऐसा कोई हटात आपको देख लिया आपने, क्या हाल होगा? थोड़ी मन में सोच लिए, थोड़े मनस्चक्र में थोड़ा चिंतन में देखिए, हटात आप जाते जाते कोई आपके मिस्टर सम आपको मिल गए जो उनका यहीं से ऊपर नहीं है, आपके क्या विकार होगा शरीर में, मन में, बुद्धि में क्या विकार हो जाएगा? बाप रे बाबा, ये क्या चीज है भाई, अभी तक तो भूत प्रेत भी ऐसा नहीं देखे थे हमने, सुने तो नहीं। ये कबंध होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हमारा वर्तमान परिस्थिति में हम जो गर्व करते हैं, हमारा जो आधुनिक एडवांस सोसाइटी है, वो कबंध ही है, मस्तकहीन स्थिति में है, हेड है ही नहीं उसका, है शूद्र तो भरे पड़े हैं, कलो शूद्र संभव, और दूसरे जन्म तो है ही नहीं, दूसरे सारे शूद्र ही 99%, थोड़े से इक्का दुक्के 2-4% वाले कोई वैश्य हैं, और 0.5% वाले कोई क्षेत्रिय हैं, इतने को लेकर के हमारे समाज बोलते हैं हम सो एडवांस्ड, सो सिविलाइज्ड। सही में ऐसे सोसाइटी की जो पूर्ण सोसाइटी देख ले भाग जाएगा, ये भूत भूत बोल के भाग जाएगा, क्योंकि सर है ही नहीं उसका, वो तो पतले पतले दो हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे, वो तो पेट अंदर घुसे हुए और मोटे मोटे पैर, जब बहुरा शूद्र हो उनके शरीर थोड़ा अंदाज लगाए, ऐसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, ये हाथी जैसे मोटे मोटे पैर जिसका हो, और उसके ऊपर पेट बिल्कुल आधा किलो 250 ग्राम के पात्र हो, और वो कोई टन टन के दो पैर, दो दो टन का हो, और वो 250 ग्राम की पेट हो, और हाथ दोनों सुई के बराबर ऐसे ऐसे कर रहा, धड़ धड़ कर रहा, नहीं सकती है, है ही नहीं कोई प्रश्न, कोई गुण नहीं, और सर है ही नहीं। तो ऐसे कोई विचित्र मनुष्य आपके सामने आ जाए तो क्या समझेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सो नाइस, कितने बढ़िया रूप है उनका, क्या सुंदर शरीर है उनका, है ना? नहीं कहेंगे ना, भाग जाएंगे भूत कहते, खड़ा ही नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते कोई उनके सामने। तो हमारे सो कॉल्ड एडवांस सोसाइटी के स्थिति हूबहू ऐसा ही है, कई टनों के पैर दोनों है, और उसी में से होड़ पड़ा, और बाकी व्यापारी तो मरमर के सुद्रोही व्यापारी पोस्ट में बैठे हैं, क्षेत्रीय पोस्ट में भी वही बैठे हैं, दुर्बल सब निर्बल होकर के, और सर तो है मस्तक हीन। तो ये दशा को जो महाकारुणिक आचार्य लोग जो परदुखे दुखी हैं वो लोग इसको विचार करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं हाय हाय क्या दशा है, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने चिंतित करके ये उपाय के इस स्थिति में तो और कोई काम नहीं करेगा, ये कहीं से सर ला करके फिट करना पड़ेगा। भगवान शंकर से पार्वती जी का जो हो गया था राम को लेकर के चक्कर थोड़ा विवाद, तो चले गए। पार्वती जी ने खूब तपस्या के बोले अरे शंकर जी मैं छोड़ के चले गए, मैं इतना मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, पहले जन्म में दक्ष के पुत्री के रूप में पार्वती जी का नाम क्या था मालूम है ना, सती, उनका नाम ही सती था। लेकिन सबसे पहले सती ने असती काम की, असती काम की ना भाई, डुप्लीकेट फिगर बनाना ही तो असती है ना। राम के सामने उनके पति भगवान शंकर वो प्रणाम किए, बोले आप क्यों प्रणाम किए, ये तो भगवान ये किसे बोले, रो रहा है भगवान ऐसे रोएगा, अरे कोई मनुष्य भी पागल हो जाता है रोने के लिए, कम से कम पेड़ पौधा को नहीं पूछता है, पत्थर को नहीं पूछता है, मनुष्य को पूछता है, ये इतने दिमाग खराब हो गया उनके, पेड़ को पूछते हैं कि मेरा पत्नी को देखा क्या आपने कहा, पत्थर को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं, ये क्या, ये तो पागल भी नहीं करेंगे ऐसा, वो कैसे भगवान है तुम्हारा भाई, जो है सो है, लेकिन यही तो प्रभु है, यही हमारे प्रणाम प्रणम्य प्रभु है। उनको डाउट हुआ, शंकर बोले क्या तुझे कोई डाउट है ना, तो थोड़ा चेक करके देखूंगी तब जाके प्रणाम करूंगी, इसे थोड़ी मेरे देख लो। शंकर जी बोले मैं कर लिया तुझे, मेरे को विश्वास नहीं, तू चेक करना चाहती है तो कर लो चेक, अब चेक कैसे करी, शंकर जी बोले मैं बैठा हूं चेक कर देना, थोड़े मैं आता हूं एक मिनट में। शंकर जी बैठे, बोले जाओ चेक कर लो। चेक करने के लिए चली तो बुद्धि में लगाया कैसे चेक करूं, यह हमारे सचमुच प्रभु है या नहीं, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो उसको चेक करने के लिए आपने आप को डुप्लीकेट बनाई सबसे पहले, जिसका नाम ही सत्य है सती है, वही बन गई क्या सीता, सीता तो है ही नहीं, तो डुप्लीकेट भेष पहना ना, आपने आपको कपट किया ना, असती किया ना, आप ऐसे हूबहू पेंटिंग करके गई, हम जैसे हुड़बकलो हो तो मान गए सीता देवी साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन वो तो प्रभु ही थे, भले रोते धोते जो भी करे शंकर जी इसलिए उनको प्रणाम किए, वो जानते हैं उनके तत्व को। वो सीता बनकर जिस सामने गए गई, वो सोच रही थी मुझे देख करके प्रभु जी बोले हाँ हाँ, उनका रोना बंद हो जाएगा, देवी कहाँ थे मैं आपके लिए कितने रोदन कर रहा हूं, आइए ऐसे बोलेंगे शायद। उनके आगे पीछे चार पांच पैंतर लगाए, भगवान रोते रोते जाते थे, देख नहीं रहे थे उनको, बार बार जैसे आगे पीछे करने घूमने लगे, बोले क्यों देख नहीं रही मेरे ओर, तो भगवान ने वो डिस्टर्ब फील किए राम ने, बोले माता जी शंकर जी कहाँ हैं, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं इधर, वो कहाँ हैं, आपको अकेले घूमना नहीं चाहिए, वो कहेंगे क्या आप अकेले क्यों, अरे बाप रे बाप दिमाग ठिकाने में आ गया। राम जी सीधा सीधा ही बात कहे और कुछ नहीं कहे, वो तो सोच रहे थे मैं सीता जी की हूबहू ड्रेस पहनकर गई हूं, बिल्कुल फिटिंग ऐसा है कि कोई 100% सीता देवी की तरह देखेंगे। लेकिन राम जी बोले ज्यादा ज्यादा उनके आगे पीछे हुए तो बोले माता आप अकेले क्यों, मां बोलकर बोले मां आप अकेले क्यों, प्रभु जी कहां, भोलेनाथ कहां है, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं इधर जंगल में, अरे बाप रे बाप, वो तो पत्नी का रूप लेकर गए थे, उनको मां बोल दिया भगवान ने, सारे गड़बड़ हो गया, आप क्या करें, पसीना उतर गया, आप तो कुछ बोलना ही नहीं था, समझ गए कि ये तो हम जो सोच रहे थे बिल्कुल गड़बड़ हो गया, मैंने डुप्लीकेट रूप लिया, और अब एक तो गलती किया कि इस प्रकार की, और फिर गए वापस फटाफट ड्रेस चेंज करके, आपने ड्रेस पहन करके चले गए शंकर जी के पास, बोले वो ना कहीं चले जाए मुझे छोड़ कर, गए जा करके भोलेनाथ पूछे और कर लिया चेक कर लिया ना, हाँ चेक कर लिया ना, क्या कैसे चेक किया, ना नहीं कुछ नहीं चेक किया, अरे आप जिसको मान लिए मैं क्यों चेक करूं, आपके बात पर मेरा थोड़ी संशय है, मैं जब प्रणाम किया आप प्रणाम नहीं किया, फिर संशय नहीं, थोड़ी बहुत सोचा, लेकिन आप जो किए सो क्या मतलब, आप भी प्रणाम किए मैं भी प्रणाम करके आ गया, बाकी कुछ नहीं। देखिए एक के बाद एक गलती करेंगे और उसी को छिपाने के लिए दूसरे गलती करेंगे, फिर उसी को छिपाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, करते ही चले जाएंगे क्रम अनुसार में। अब वो सती थी, नाम ही सती थी, अब एक बार भगवान के सामने असत्य काम किया तो असती करते गए। इस शरीर में सुधार नहीं हो सकता, शंकर जी बोले गया तू तो एक के ऊपर एक गड़बड़ करते चला और छोड़ के चले गए। तो सती ने जब असती का काम की तो उनको सुधारने के लिए इस शरीर में नहीं हो पाया, वो शरीर की छोड़ना पड़ा, दोबारा जन्म लेकर के पार्वती की पर्वत कन्या बन पार्वती बनकर आई, फिर शादी करके फिर जाकर ठिकाने में आई, कभी नहीं उसे करेक्शन नहीं हो पाया कभी। तब जो मैं किस लिए बात कहा हेडलेस सोसाइटी है, हाँ सॉरी हेड के लगाने की बात। एक बार ऐसे घटना हुआ था, वो जब पार्वती जी ने अलग होकर खूब तपस्या की, तपस्या की अनेक साल तपस्या करने के बाद, शंकर जी थे नहीं आपने तब कर रही थी, तो उनको तपस्या के सिद्धि प्राप्त हुई, तब स्नान करने के लिए जब चली तो शरीर से मल निकाली, वो इसके मल से एक मूर्ति बना दी, तो साक्षात ईश्वरी है, तो उनको जीवन्यास कर दी। जीवन्यास कर दी, बोला माता जी क्या सेवा करूं आपके, बोले मेरा सिक्योरिटी बन जाओ गेट पे, किसी को नहीं छोड़ना। तो गेट पर खड़े हो गए और सारे देवताओं में बोले तपसिद्ध हो गए देवी, अब उनके पास जाना चाहिए, उनकी आराधना वंदना करने के लिए आए, किसी को नहीं छोड़ा। और देवी के कृपा से महाशक्तिशाली थे, खूब लड़ाई किया, और जाकर देवताओं ने कंप्लेन किए इसे इसे, तो भगवान शंभु स्वयं आए, उनको भी लड़ा उनके साथ छुड़ाने। शंकर बोली बदमाश लड़का इतने उदंड है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो गला काट दिया उनका, गला काट दिए, अंदर गए, वो चित्कार करके गिर पड़ा। पार्वती जी उनका हालात चित्कार सुन के दौड़ आए, देखे कि बेटा उनका सर कट कर पड़ी हुई, तो पति की देख के प्रणाम की, बोली ये क्या कर दिए, तो आपका पुत्र था, मुझे किसी पता आईडी था नहीं उसका, आईडी प्रूफ लगाकर घूमता तब तो पता चलता था नहीं, मैं क्या तू अंदर था बाहर था, मैं क्या करूं, तो नहीं किसे बचा दो क्या करें, और तो गला काट कर फेंक दिया, बातचीत करने में गला कहीं गया, सर चला गया कहीं। आप बोले जिलाना है, बोले सर तो चाहिए, सर के बिना काम नहीं चलेगा। तो सर जो था वो तो पता नहीं कहां कोई उठा के ले गया, वो खा लिया, पूछ गया, बाद में सोचते हैं सर के बारे में। सर पर तो शंकर बोले आपने गण को बोले जाओ ढूंढो किसी का सर लेकर आओ, ना किसका सर ना देखो, जो कोई उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा को सर करके सोया हो सर काट के ले आओ, वो काम में आ जाए। तो गए थे, थोड़ी दूर गए, एक हाथी सोया हुआ था, शिवगण उसके गला काट कर ले आए, हाथी के मस्तक काट कर ले आए। तो शंकर भगवान सुपर सर्जन है, बिना कोई ऑपरेशन थिएटर को गए, वहीं के वहीं खड़े खड़े जोड़ दिए सर को। वो कब से मरा पड़ा था, बड़ी कबल था, हाथी के सर को लगाकर फिट करते जला दिए उसको, कोई एनेस्थेसिया नहीं, कोई पट्टी फट्टी मलम इंजेक्शन कुछ नहीं, वहीं से जला दिए उसको, ये है इसे सर लगाकर जला दिए। और तब से भगवान जो उनके पुत्र बने उनका नाम हुआ गणपति गजानन, गज आनन जिसका है वो गजानन। यहां से गले से नीचे तक बढ़िया सुंदर देवताओं के जैसे रूप, और गले से ऊपर तक गज मस्तक, हाथी के जैसा सर, मुंह है हाथी का, बाकी शरीर है देवताओं का, ऐसे बने। तो जैसे भी हो, चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी किसी का, एक सर तो चाहिए, बिना सर में तो कुछ काम नहीं बनेगा। देवता लोगों को भी आवश्यकता है सर, मनुष्यों को तो बात ही क्या कहें। तो सर का होना कितनी आवश्यकता है इस संसार में, है ना, नहीं आप समझते, सर के बिना तो हम डेड हैं, बाकी सब चला जाए जी जाए, लेकिन सर के बिना संभव नहीं। वो सर जो है वो कौन है, ब्राह्मण है, ये है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के ड्यूटी है
वो सर का ड्यूटी है, यही काम करे। और समाज में इस काम के लिए कोई है नहीं, उनको सब है ज्ञान में देखते हैं। वैदिक निर्देश के अनुसार जो भिक्षावृत्ति है, भीख मांगना, ये सबसे उच्चतम कर्म है, द हाइएस्ट वर्क है, सबसे उच्चतम कर्म माना जाता है उसको। तो इसीलिए इसी काम को किसको करने के लिए दिया जाता है? ब्राह्मण को, कोई नहीं बाकी करेगा उसको। इसलिए ब्राह्मण और सन्यासी, इन दोनों का नाम है भिक्षु आश्रम, उनको भिखारी कहा जाता है। वैदिक का शब्द होने के लिए भिक्षु आश्रम कहा गया, क्योंकि वही भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा करने के लिए योग्य है, बाकी कोई नहीं है। आजकल हम एडवांस सोसाइटी में अपाहिज, लंगड़े, लूले, इस प्रकार जो हैंडीकैप लोग, उन्हीं की भिक्षावृत्ति छोड़ दी, वही करें, और जो एडवांस है वो हम भिक्षा थोड़ी करेंगे। ब्राह्मण है, हम तो नौकरी करेंगे, भले आपने पोजीशन मतलब कास्ट को सर्टिफिकेट में चेंज चांस करा करके ऐसे कर दें चाहे हमको टाइम मिल जाए, लेकिन हम नौकरी करेंगे, ब्राह्मण है। शास्त्र आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण भले मर जाए, शूद्र कर्म नहीं कर सकता। ऐसे विपज्जनक स्थिति अगर आ जाए, कभी वो ब्राह्मण कर्म में आपने पेट पोष भी नहीं पाए, आपने शरीर धर्म निभा नहीं पाए, तो एक स्टेप डाउन आएगा, मतलब क्षत्रिय स्वभाव कर सकता, जिसे द्रोणाचार्य आप देखें कई लोग क्षत्रिय बन गए। ब्राह्मण कर्म जब नहीं कर पाए, उसमें पेट भरण पोषण नहीं हो पाया, वन स्टेप डाउन आओ, क्षत्रिय बनो, लेकिन वैश्य नहीं होंगे, शूद्र तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। क्षत्रिय का भी यही हाल है, ब्राह्मण तो नहीं बनेंगे, कभी कभी प्रमोशन लेकर कर लेते हैं, लेकिन विपज्जनक स्थिति आए, एक स्टेप डाउन हो सके, वैश्य हो, लेकिन वो भी शूद्र नहीं होंगे। क्षत्र वर्ग, ब्राह्मण वर्ग कभी शूद्र वर्ग को नहीं आए। और जिस समाज में योग्यता प्राप्त करने के बाद होड़ लग जाए सारे ज्ञानियों के बीच में, नौकर बनू नौकर बनू, तो ये तो शूद्रों का स्वभाव वाले हैं, क्योंकि शूद्र ही नौकर बनना चाहेगा, वो कभी नहीं बनना चाहेगा। भिक्षा करके जी लें, तो ही उच्च कर्म करके जीना चाहते भिक्षावृत्ति में। तो समाज के लिए ये वर्ण और आश्रम इतने अनिवार्य है, इतने आवश्यकता है, इसी से समाज श्रृंखलित और आपने स्थिति में ठीक ठीक रहेगा। अगर एक वर्ग रहेंगे जो समाज को सारे प्रकार के लेबर क्लास रहेंगे, सब श्रम करेंगे, दूसरे वर्ग रहेगा सबको व्यापार करके सबको ठीक ठाक वाणिज्य करके देगा, तीसरे वर्ग रहेगा पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा, पालन पोषण करेगा, मेंटेन करेगा, रूलिंग करेगा, शासन करेगा, और एक वर्ग रहेंगे वही सब काम नहीं करके वैदिक निर्देश को पढ़ करके समझ करके दूसरे को बताएंगे, भाई ऐसे करना चाहिए, ये नीति है, ये उपाय है, ये भूल हो गया, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये सब सिखाए पढ़ाए, टीचरशिप। जब ये चार प्रकार के अंग ठीक ठाक रहे शरीर में, जिस शरीर एक पूर्णांग शरीर माना जाता है, ठीक है, पूर्ण समाज में भी ये चार प्रकार के अंग वाली वर्ण वाली ठीक रहे, तब जाकर समाज परिपूर्ण समाज माना जाएगा, है ना। इसी प्रकार आश्रम में चार आश्रम माना गया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ठीक। इसी प्रकार ये भी है आध्यात्मिक वृत्ति में, आध्यात्मिक जाना चाहते हैं तो हमारे पूरे आयु को, कलिजुग में अवधि है 100 साल की, तो उसको चार भाग में विभाजन कर दिया गया 25-25 साल के। प्रथम 25 साल ब्रह्मचारी जीवन बिताओ, स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी मीन्स स्टूडेंट, है ना। आजकल हमारे बड़े गलत समझ आ गया सबको, ब्रह्मचारी मीन्स जो शादी नहीं किया, नो ये गलत है ना, शादी नहीं करने से क्या ब्रह्मचारी हो जाएगा? जैसे बिल्कुल रंग ना, ये नहीं। ब्रह्मचारी का असली अर्थ है स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसति शांत दांत गुरुरहितम, ये ब्रह्मचारी है। शादी न करना कोई ब्रह्मचारी का कोई सिम्टम्स नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी प्रमोशन होता है तब शादी करता है। ऊपर जब शादी करेगा तो एक प्रमोशन पाएगा, गृहस्थ में आश्रम में जाएगा। ये 25 साल जो ठीक से निभाया, स्टूडेंट लाइफ में जो ठीक से शिक्षा तालीम प्राप्त किया, तो अभी ठीक गृहस्थ बन सकता है। अगर नहीं बने सीधा ऊपर में जा सकता है, सन्यासी तक जा सकता है। तो गृहस्थ बने, गृहस्थ भी 25 साल तक निभाए, उसके बाद वन में चले जाए, वन प्रवेश वानप्रस्थ करे। इसीलिए हमारा 25 साल और इसके बाद 25 साल ऐड कर दो, कितना 50 साल। 50 के बाद क्या संख्या क्या आता है? 51, 52, वन का है वो, वन वाली संख्या है। हाँ, बन जाना चाहिए तभी। आजकल तो बनी ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते वृंदावन चले जाओ, वहां जाके भजन करो। बन जाने के लिए वयस है। तो 25 साल वन प्रस्थ में रह करके लास्ट जो 25 ईयर से मुख्य प्राप्त सन्यास के लिए तैयार। पूरे 100 साल को अगर विश्लेषण करके देखा जाए तो 75% वैराग्य और त्याग के लिए बताया गया, 25% भोग के लिए बताया गया, है ना? नहीं तो हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, हम बोलते नहीं 75% भोग होना चाहिए, 5% सोच लेंगे कभी त्याग फ्याग के बाद, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, वो भी अच्छा है। तो कैसे सुस्त समाज होगा? महारुग्ण स्थिति है समाज का, भी अति रुग्ण स्थिति। ना आश्रम व्यवस्था ठीक है, ना वर्ण व्यवस्था ठीक है, ना किसी का कोई कर्तव्य ठीक है, ना कर्तव्य कोई ठीक ठाक नहीं। इतने हैवी डिजीज कंडीशन है समाज में। तो अभी ठीक करेंगे कैसे? ना पहले सर तो एक आ जाए तभी व्यवहार ठीक करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए मीडिया लोगों को बोले कि इसी दयनीय स्थिति में समाज में अति आवश्यक है एक ब्राह्मण वर्ग। तो मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको तालीम दूंगा, उनको सिखाऊंगा ब्राह्मण के गुण क्या होता है, ब्राह्मण के कर्म क्या होता है, कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग करके बनो। तो बोले ऐसा सिखा पढ़ा कर ट्रेनिंग देकर ब्राह्मण बना देंगे ना? कैसे बनते ब्राह्मण? जन्म से बन जाते? जन्म से तो नहीं बनते। भगवान जो बनाने वाले वर्णों के बोले गुण और कर्म के अनुसार, तो इसे ऐसा गुण दिलाऊंगा, इसे कर्म दिलाऊंगा। जन्म के बाद तो कहे नहीं। तो शास्त्र कहते हैं जिसी प्रकार एक कांसा बेल मेटाल, उसका एक रासायनिक क्रिया होता है, उस रासायन क्रिया पद्धति में कांसा को अगर आप डालेंगे फिर उसको आग में तपाएंगे तो सोना बन जाता है। अब जानते हैं जो क्रिया को जानते हैं वो सोना बना सकते हैं। बेल मेटाल से गोल्ड बन सकता है, शास्त्र में इसे विधि बताया है, ऐसी विधा है। उस विधि के अनुसार बेल मेटाल गोल्ड में परिणत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये कांसा धातु स्वर्ण धातु में परिणत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार विशेष प्रक्रिया विधान के द्वारा, तालीम के द्वारा, ये सूत्र कोटि के मनुष्य भी ब्राह्मण कोटि के बन सकते हैं। विशेष प्रशिक्षण आवश्यकता है उसके लिए। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें, तालीम को प्राप्त करें, तो ब्राह्मण के उचित गुण और उनके उचित कर्म भी आप कर सकते हैं और ब्राह्मण का स्टाफ लग सकता है आपको, है ना? तो प्रभुपाद जी का यही विजन था कि इस संस्था में जितने देव और देवियां आते हैं तो उनको कम से कम इसी बाजार को सोचना चाहिए कि हमारे आचार्य का ये सोच था, हम लोग को इतने प्रशिक्षित होना चाहिए, इतने तालीम प्राप्त करना चाहिए आपने आप को इन स्थिति तक ऊपर तक लाना चाहिए कि तक कम से कम हम ब्राह्मण कहलाने के लिए लायक बन जाएं, ब्राह्मण या ब्राह्मणी, तब बाकी समाज का काम अपने आप ठीक हो जाएगा, समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा। लेकिन दूसरे तो बोलेंगे कम से कम जिंदा शरीर है, मुर्दा तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेड बॉडी है, उसको जिलाने के लिए हम बाकी कुछ ना करें, आपने आप को और गुण और कर्म ब्राह्मण बना ले, ब्राह्मणी बना ले, तो दूसरे भी लोग के लोग इस समाज को देखकर कहेंगे एटलीस्ट इज लिविंग बॉडी, ये तो जिंदा समाज है, जीवित है, यहां तक स्टेज में लाए, बाकी कुछ करेंगे बाद में, पहले जीवित तो करो, मरे शरीर में क्या प्रमोशन करेंगे, क्या प्रोग्रेस करेंगे, तो प्रोग्रेस करने के लिए पहले जियो तो सही, तो जीने के लिए सर होना कितना आवश्यकता है। तो इसलिए सभी का यह कर्तव्य है, सभी लोग का मन में बुद्धि में किसी प्रकार के अपने अपना स्थिति अपने अपना बल बुत्ते पर समझ करके ये निर्णय लेना चाहिए कि हमको कम से कम एक ना एक दिन इस स्थिति पर आना चाहिए। इस सोसाइटी का, इस सोसाइटी के बनाने वाले आचार्य का यही सोच है, हमसे वही अपेक्षा करते हैं, केवल ये नहीं चाहते हैं, अरे हमारे मनुष्यों का आदि पिता आदि नेता मनु को भी यही है आज्ञा, इसलिए कहते हैं कि प्रभु हम आपके आज्ञा पालक है, निदेश कारिणी तब आपके निदेश कारिणे, आपके आज्ञा क्या है, न वर्णाश्रम धर्म को सीखना, उनको सिखाना, पालन करना, पालन करवाना, तब तक मनुष्य कहलाएंगे, मनु को जो आज्ञा भगवान से मिला था और मनु को आज्ञा जो मनुष्य समाज के मिला उसको पालन करेंगे तो मनुष्य कहलाएंगे, अब तो मनुष्य कहलाने के लायक भी हम लोग है ही नहीं, है ना, भले शरीर मनुष्य का मिल गया लेकिन हम लोग सब टू लेग्ड सिविलाइज्ड एनिमल है, एनिमलिस्टिक क्रिया कर रहे हैं। तो इसलिए वर्ण और आश्रम का आवश्यकता कितने अनिवार्य है, और मनुलोक ने आज भगवान के सामने, भगवान ने जो ये दुर्नीतिग्रस्त स्थिति, जो महाअसुर हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब सोना और कशिप मतलब आराम तकिया, जो इस प्रकार भोग करना और धन को हड़पना, यही हिरण्यकशिपु के प्रिंसिपल, तो इसी में जो राजा लिप्त हो जाए तो फिर वर्ण आश्रम कैसे मेंटेन होगा, खत्म, बल्कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, नो वर्ण नो आश्रम नथिंग, तो भगवान ने आज इसको समाप्त कर दिए हैं। तो इसलिए बोलते हैं प्लीज अर्डर अस, अब किम करवाम है, हम अभी अब क्या करेंगे, अभी तो हम सुधर गए हैं, हमारा स्थिति अभी ठीक हो गया है, अब आप आदेश करें आपके क्या सेवा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन या कमेंट? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, नहीं प्रभु जी ने पूछ रहे हैं कि सभी को जबरदस्ती ब्राह्मण तो बना नहीं सकते है ना, नहीं आपका सर नहीं है, पैर का एक पीस काट करके लगा दे सर बन जाएगा ना, हाथ में काट करके लगा दे सर बना दे, नहीं, भगवान शंकर को भी सर एक लाना पड़ा, दूसरे कोई अंग नहीं लाना पड़ा, यही सर ही सर बनेगा, दूसरे कोई पोस्ट नहीं ले सकता। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोले शूद्र का भी आवश्यकता है, वैश्य का भी आवश्यकता है, क्षत्रिय का भी आवश्यकता है, उनको भी सही से उनके भी अच्छे बनाना चाहिए, लेकिन कौन कराएगा, कौन सिखाएगा, सर ही कराएगा ना। तो हमारा सोसाइटी में यस, केवल ब्राह्मण का नहीं, पहले प्रभुपाद जी ने इसलिए पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण सही क्षत्रिय सही शूद्र सही वैश्य को बनाएंगे, तभी सोसाइटी ठीक होगा, है ना। नहीं तो थोड़े बहुत कुछ ब्राह्मण बने तो वो फिर सिलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट करेंगे कि ये क्षत्रिय बने, ये ब्राह्मण बने, ये वैश्य बने, शूद्र बने। ये तालीम कौन देगा? ये शिक्षक का काम तो केवल ब्राह्मण का, हेड का। तो बोले हेड ना हो, शिक्षक ना हो, दूसरे को सिखाएगा कैसे, बताएगा कैसे, है ना। तो पूरे समाज के लिए, देश के लिए इसकन सोसाइटी हेड जैसा काम करना चाहिए। और समाज को बोले हम खुद क्यों जाकर करेंगे खेती बाड़ी गोपालन, ये हमारा काम थोड़ी है, हम बताने वाले हैं आप करो। अरे पूरे अरब अरब खरब जनता से कितने भगत हैं इसकन के, तो उन लोग को सर बने, दूसरे को बनाए, हजारों संख्या में वैश्य शूद्र क्षत्रिय बनाओ, उनको बोलो कि आप करो आप करो आप करो, हम खुद नहीं करेंगे, हम तो भीख मांगकर खाएंगे, मस्ती से घूमते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, मानो न मानो वही काम हमारा होना चाहिए बस। वी शुड बी टीचर एंड प्रीचर, दैट्स इट। बाकी दुनिया में इसी पोस्ट के लिए तो लाखों पड़े हैं, इसके लिए हमको चिंता क्या करना। ओके प्रभु जी ने पूछ रहे हैं कि बताया गया कि भिक्षावृत्ति सबसे उच्च कर्म माना गया, इसको कैसे मानेंगे। लेकिन अभी तक हमारा दिमाग इतने नीच धरातल पर आ चुका है, मानने के लिए प्रस्तुत नहीं कि भिक्षा करना अच्छे लोगों का काम है क्या। सही में हम जानते नहीं भिक्षा कर्म है क्या चीज। भिक्षा मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे दूसरे का धन लेकर खाएंगे, मांग कर ले लेंगे उनसे। अब जानते नहीं वो जो मांग कर जो लाते हैं ये उनका कर्म ही लाते हैं, जो वस्तु उनसे मांग करके लाते हैं ये उनका कर्म फल है। और उनका कर्म को पचाने का डाइजेस्ट करने का आपके क्षमता होना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे अपने इंडाइजेशन हो जाए, दूसरे दिन दस्त लग जाए। इतने पचाने की क्षमता होना चाहिए तब दूसरे का खाना खाओ, मांगो उनसे जाकर, पचा नहीं सके तो क्या खाएंगे। तो जो डाइजेस्ट दूसरे को कर्म को मिटिगेट करने का समाधान करने का ये जो शक्ति, ये शक्ति केवल प्राप्त होता है तपस्या से व्रत से भगवत भजन से, तभी तो प्राप्त होता है। ये काम ब्राह्मण और सन्यासी करते हैं तो इसलिए ये दूसरे के कर्म लेकर पचा सकते हैं, इसलिए सबसे हाईएस्ट वर्क यही है ना। आया समझ में? हाँ जी बोलो। तो प्रभु जी ने बोले भक्त तो जाति से ऊपर होता है, बात सही है। तो पहले भक्त जब तक नहीं बने हैं, भक्त आप सोचते बन गए क्या, भक्त जब तक नहीं बने तब तक की स्थिति में रहे, जब भक्त बन जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, है ना। हाँ जी आप बोलिए, सेम क्वेश्चन आ रहे हम। हाँ जी बोलिए। यस यस अरे भाई इसको फिर मुझे बताना पड़ेगा। ये सोसाइटी में जो कार्य होता है सुबह से शाम तक यही तो ट्रेनिंग प्रोसेस है। हर एक स्कन सेंटर में सुबह से शाम तक जो हो रहा है उसे नोट कर लीजिए, यही है ट्रेनिंग प्रोसेस। उसी को ठीक ठीक से करे तो आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, यही तालीम है ना। मैं तो काल भी कह रहा था ये सत्य बात है, कोई गलत बुरा ना मानना। आज कोई रास्ता में ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है एक व्यक्ति, और उनको पकड़ के ले आओ, बाकी दूसरा ट्रेनिंग मत दो, ला करके इसे कपड़ा पहना दो, बढ़िया सा कंठी तिलक चोटी रखकर को तिलक करके छोड़ दो, काल देखना है गेजेटेड अफसर, बोला राम राम जी महाराज, बोलेंगे ना नहीं? और रिक्शा वाला को आए अफसर का टाई कोट पहना करके डिग्री ला के छोड़ दो, कहेगा नहीं? कहेगा एक दिन के ताले में ये प्रभाव, अब पूरे रहेंगे तो क्या होगा? हम ठीक ठीक से उसको पालन नहीं करते हैं, लेकिन आचार्य लोग विफिटिंग करके दिए हैं पक्का पैकेज, कंप्लीट पैकेज, और ठीक ठीक पालन करे तो ब्राह्मण बनकर प्रोडक्ट निकलेगा, है ना? नहीं हाँ। और कोई? हाँ जी,
जो मनवंतर होता है यही मनु के अलग है।
बहुत अच्छी बात, मैं बोलने वाला था उस बात को भूल गया, आपने याद दिला दी। मनु मनुष्य जाति के जनक होते हैं, उनसे सृष्टि हुआ। तो मनु एक सरकार है, ये सरकार में जैसे हमारा एक मंत्रिमंडल होता है, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, उनको विभाग दिया जाता है। तो एक मनु के सरकार में मिनिमम 5 विभाग होता है। सबसे पहले मनु एक पोस्ट है, मनु के मात्र जो मनवंतर परिवर्तन होता है, देखिए ये 5 पोस्ट निश्चित परिवर्तन होगा, मनु होगा, मनु के साथ मनुपुत्र होगा कंपलसरी, मनु, दूसरा है मनुपुत्र, तीसरा है सप्तऋषि, मनु के साथ वो सप्तऋषि भी चेंज होंगे, चौथा है इंद्र, इंद्र इंद्र आदि देवता, और पांचवा है मनवंतर अवतार। ये 5 पोस्ट तो जब मनु बदलेंगे वो 5 पोस्ट बदलेगा। तो जितने बार मनु आएंगे इतने बार एक भगवान इस मनु के हेल्प के लिए एक अवतार लेकर के मनु के साथ रहेंगे। एक पोस्ट उनका है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर में हमारा क्या क्या विभाग होता है, एक रक्षा विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है ना, मेन मेन 5-7 मोटा मोटा डिपार्टमेंट। तो इसे मनु सरकार में 5 मोटा मोटा डिपार्टमेंट है। एक मनवंतर का पोस्ट, मनवंतर अवतार, वो भगवान साक्षात लेंगे। कभी कभी मनु ही कोई क्वालिफाइड नहीं मिलता, भगवान ही मनु बन जाते हैं, दोनों काम करते हैं, ड्यूअल एक्शन करते हैं। तो मनु कोई शक्ति शक्तिशाली जीव को मनु बनाया जाता है, तो उनके साथ साथ सबसे प्रथम सप्तऋषि दिया जाता है जो उनको सिखाएंगे, सप्तऋषि जो नीति नियम को देखकर उनके साथ रहेंगे, और एक मनुपुत्र होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, और उनके साथ इंद्र आदि देवता उनके सहायता करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और सारे कार्य ठीक ठाक से एग्जीक्यूट काम होता नहीं कि भगवान स्वयं एक अवतार लेकर मनु के साथ रहेंगे। हरेक मनु मनवंतर में एक भगवत अवतार रहेगा जिसको मनवंतर अवतार कहा जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में, दिन मतलब 12 घंटा में, सुबह से शाम के अंदर ऐसे ऐसे 14 बार सरकार बदलता है, 14 मनु आते हैं और अपने अपने शासन करके रिटायर करके चले जाते हैं। उनके शासन का समय कितना है? 5-7 साल नहीं है, केवल 71,000 या 72,000 चतुर्युग। एक चतुर्युग होता है, जैसे कलयुग हमारा अभी चल रहा है, उसका ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। अभी तक 5,000 साल गया, अभी 4,26,000 साल बाकी है और कलयुग का ही। तो एक कलयुग का अवधि है 4,32,000 साल, उसका जस्ट डबल है द्वापर का, उसी का ट्रिपल है त्रेता का, उसका 4 गुना है सत्य का। तो उनको सारे को मिला दो, 4 युग का समय को अवधि को मिला दो, तो लगभग 43,20,000 ना, 43,20,000, ये एक 43,20,000 साल एक चतुर्युग का अवधि है, इतने साल। तो ऐसा ऐसा 71 चतुर्युग तक एक मनु सरकार शासन करेगा तो रिटायर कर लेगा, फिर दूसरा मनु आएगा, ये इतना 74 चतुर्युग तक शासन करेगा, रिटायर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 14 मनु जब आ करके शासन करके चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी देखेंगे अभी शाम हो गया, उनके घड़ी में संध्या हो गई, संध्यारती करना है अभी, है ना? ये है भगवान की सृष्टि, है ना? नहीं और कुछ? कौन है? हाँ जी बोलिए।
जैसे आपने बताया कि एक शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे चारों का आपने डिस्क्रिप्शन कराने के लिए है, तो वैष्णव उस समय में किस अंग की बातें कार्य करता है?
हाँ जी,
वैष्णव
वैष्णव तो चार से परे होते हैं, वो शरीर में होंगे नहीं,
शरीर में छूट नहीं
ना, वो वर्ण और आश्रम से परे होते, उनके अंदर नहीं। ना हम वर्णी न च नरपति ना हम वैश्यपि शूद्र गोपी भर्तु पदकमलयोरुदास दासानुदास, वो इसी चार फिटिंग में नहीं आते, तो छोड़कर आगे से समाज छोड़ दिए, वर्ण छोड़ दिए, आश्रम छोड़ दिए, मुंड मुड़ा दिए, फिर क्या इसमें, इसमें है ना। प्रभु जी ने अच्छा बात पूछते हैं, थोड़ा सा आपका कहना मिस्टेक हो रहा है, कभी भी जन्म से कोई द्विज नहीं बनता, द्विज शब्द का अर्थ है दूसरा जन्म, दूसरा जन्म को द्विज कहा जाता है, दोबारा जन्म हुआ तो जन्म से तो पहला जन्म है, दोबारा जन्म कहीं कब हुआ, द्विज पहले से कोई नहीं बनता, जन्मनांग जायते शूद्र, हमेशा जन्म में सब शूद्र बनकर जन्म होंगे, फिर संस्कारात द्विज उच्यते, उनको सिखाया जाएगा, संस्कार कराया जाएगा, तब द्विज बनेंगे, संस्कारे द्विज उच्यते वेद पाठित भवेत विप्र, वेद आदि पाठ करके विप्र बनेंगे, है ना। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, विष्णु तत्व जानाति इति वैष्णव, समझ ये हमेशा ही सीरियल है। ओके, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, क्षमा करना मुझे, टाइम ज्यादा हो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की।